अगली सूरत सबा है। एक मुल्क एक कौम के नाम पर मलका सबा थी और एक मुल्क था। पूरी सूरत में जो रंग आपको दिखेगा वो नाशुक्रियों का दिखेगा, कुफर यानी नाशुक्री और शुक्रगुजारी यानी अल्लाह की बात को मानना इंसान के लिए कैसे अहम है। हम इसमें देखेंगे कि जब अल्लाह ताला हमें नेमते देता है तो उसके बाद हमसे कौन से रवैये चाहता है। बड़ी मारूफ कौम थी, जरबुल मिसल थी, उसकी तरक्की की दास्तानें ऐसी हैं जैसे आज के दौर का कोई बहुत ज़्यादा खुशहाल मुल्क हो, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनके सारे रिसोर्सेज एक एक करके ख़त्म कर दिए और फिर एक वक्त आया कि उनको बातें बना दिया। हम इस सोच के साथ इसको पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला हमें ना शुक्रियों से बचा के शुक्रगुजार बंदियाँ बना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير। حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، हर चीज को वो जानता है और रहीम और गफूर है। हाईलाइट करें, अपने लिए सोचिए जो कुछ मेरे दिल में आता है अल्लाह को उसकी भी खबर है, तो दिलों की इस्लाह करनी है। मुनकरीन कहते हैं क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही। कहो कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। इससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी है ना जमीन में, न जर्रे से बड़ी और न इससे छोटी, सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है। ये क़यामत इसलिए आएगी कि जज़ा दे अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनके लिए मग़फ़रत और इसके करीम है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान ला कर नेक अमल की तौफीक दे और हमारे लिए मग़फ़रत और इसके करीम को आसान कर दे। और जिन लोगों ने हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए जोर लगा दिया, इनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अज़ाब है। हाईलाइट करें और दुआ कर लें कि अल्लाह हम तेरी किताब की आयतों को नीचा ना दिखाएं खुद को बड़ा समझते हुए। ए नबी इल्म रखने वाले खूब जानते हैं जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया वो सरासर हक है। वो खुदा अजीज़ो हमीद का रास्ता दिखाता है। मुनकरीन लोग कहते हैं हम बताएं तुम्हें एक ऐसा शख्स जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा मुंतशिर हो चुका होगा, इस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। ना मालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ घड़ता है, ये से जुनून लाहक है। नहीं बल्कि जो लोग आखरत को नहीं मानते वो अज़ाब में मुब्तला होने वाले हैं, वो बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या उन्होंने कभी इस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए? हम चाहें तो इन्हें जमीन में धसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। दर हकीकत इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें रजू करने वाला बना दे। आगे आप शुक्र गुजारी की मिसाल पहले आएगी हजरत दाऊद और सुलेमान की सूरत में। वलकद आतैना दाऊद मिन्ना फजला, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास से बड़ा फजल अता किया और हमने हुक्म दिया कि पहाड़ों इसके साथ हम आहंगी करो, और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया। हमने लोहे को इनके लिए नरम कर दिया इस हिदायत के साथ के वो जरहे बना और इनके हल्के ठीक अंदाजे पर रख। ए आले दाऊद नेक अमल करो, जो कुछ तुम करते हो इसको मैं देख रहा हूँ। ये है अल्लाह का खूबसूरत असूल, नेमतों से फ़ायदा उठाओ, खूब अच्छे काम करो, इंसानियत को फ़ायदा दो। अल्लाह ने हजरत सुलेमान की सूरत में उम्मत मुस्लिमा को एक रोशन मुस्तकबिल दिखा दिया कि जब मुसलमान दीन और दुनिया में तरक्की करेंगे तो दुनिया के लिए कितना बड़ा नफ़ा होगा। हजरत दाऊद उसकी मुँह बोलती तस्वीर हैं। वली सुलेमान अर्रीहा, और सुलेमान के लिए हमने हवा को मुसख़र कर दिया। सुबह के वक्त उसका चलना एक महीने की राह तक और शाम के वक्त इसका चलना एक महीने की राह तक। हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बना दिया और ऐसे जिन उसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से इसके आगे काम करते थे। इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता इसको हम एक भड़कती हुई आग का मजा चखाते। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहते, ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हौस जैसे लगन और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी दे गए। ए आले दाऊद अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में बहुत ही कम शुक्र गुजार है। इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा, वक़लीलुम मिन इबादी अश्शुकुर। 3 सेकंड तक इस पे गौर करें। मुझे ऐसे लगता है पूरे कुरान में इंसानों को शर्मिंदा करने के लिए कोई और आयत अगर ना होती तो सिर्फ ये एक आयत काफी है। मालिके कायनात नेमते देने वाला ये शिकवा करता है कि मेरे बहुत थोड़े बंदे शुक्रगुजार हैं। आप एक माँ की जुबान से ये जुमला सुने, मेरे बच्चों में बहुत थोड़े शुक्रगुजार हैं, मेरे बच्चे मेरी बड़ी कम कदर करते हैं, बच्चे तो मेरे अच्छे हैं बस उसमें एक ही शुक्रगुजार है, तो बाकियों के लिए शर्मसारी है ना। इतनी नेमते पाते हैं रब की, इतना खाते हैं, इतना लेते हैं, शुक्र कितना है। शुक्र के वक्त पे तो हमें शिकवे सूझते हैं, अमल के वक्त में हमें तावीलात सूझती हैं, तो शुक्रगुजारी है क्या? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे, इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी। और याद रखिए, जिसने शुक्र करना है ना, उसके लिए तो ये भी नेमत है कि उसको अल्लाह ने शुक्र का मौका दिया। हजरत दाऊद के गालिबन कौल है कि अल्लाह तेरा मैं शुक्र करता हूं, ये भी तो एक नेमत है, बता इस पे मैं कैसे शुक्र अदा करूं। देखिए, जो नाशुक्रे लोग होते हैं ना, जले कुटे दुखी परेशान, वो ऐसे लगता है लोगों को कि बहुत मजबूर है, लेकिन अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा है वो नाशुक्रे होते हैं, जिसको आप अपनी जुबान में कहें कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह में ना बंदों के मामले में ना शुक्रा करे और ना अल्लाह के मामले में ना शुक्रा करे। फलम कदई नौतमादी, फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया, तो जिन्नों को इनकी मौत का पता देने वाली कोई चीज इस घुन के सिवा ना थी जिनके असा को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान गिर पड़े तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब जानने वाले होते तो इसी जिल्लत के अजाब में मुबतला ना रहते। हजरत सुलेमान चूंकि जिन्नों से काम ले लिया करते थे, अल्लाह ताला ने उस दौर में मुसलमानों को इतनी तरक्की दी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और देगे और जो कुछ अभी हमने पढ़ा ये करवा लिया करते थे। हजरत सुलेमान ने बैतुल मकदस की तामीर शुरू करवाई हुई थी, जिसको आज भी आप सुलेमान के नाम से जानते हैं, हेकले सुलेमानी। तो हजरत सुलेमान की मौत का वक्त आ गया, अब अल्लाह चाहते थे कि ये काम पूरा हो जाए। हजरत सुलेमान ने अपने लिए एक शीशे का कहते हैं कमरा बनाया होगा या क्या होगा, वहां खड़े रहते जिन समझते कि वो आपको देख रहे हैं, तो हजरत सुलेमान उनको एक किस्म का ऑब्जर्व कर रहे होते थे। मौत आई तो वो वहीं खड़े रहे, ये अल्लाह की रहमत से हुआ, अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा किया। इस वक्त में लोगों के गुमान में ये था कि जिन्नों को गैब पता है, लेकिन अल्लाह ये साबित करना चाहते थे कि जिन्नों को गैब नहीं मालूम, तो जिन्नों को नहीं पता चल सका कि ये फौत हो गए हैं, तो वो घर बनाते रहे, महल बनता रहे, वो जो भी हेकले सुलेमानी था। इधर वो पूरा हुआ, अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो लाठी थी जिसके ऊपर टेक लगा के सुलेमान खड़े थे, उसको दीमक आ गए, टर्माइक जो है वो आई और उसने खाया, वो लाठी खोखली हुई, वो गिरी, हजरत सुलेमान गिरे, जिन्नों को पता चल गया कि ये तो फौत हो चुके हैं, तो वो भी भाग गए। जैसे कुछ लोग उनके सर पे आप खड़े रहे तो काम करते हैं, आप उधर जाते हैं बच्चे आंख चुरा के फिर वही काम करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस एक वाक्य से हमें बहुत कुछ बता दिया कि अल्लाह अपने काम ले लेता है। याद रखिए, मौत के बाद भी अल्लाह ने सुलेमान से दीन का काम ले लिया, उनकी डेड बॉडी को खड़ा करके। तो जिंदा इंसानों के लिए तो फिर कितनी ज्यादा इसमें नसीहत की बात है कि अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा काम ले ले कि हमारे बाद के लिए वो खैर का जरिया लोगों के लिए बनता जाए। अब इसके बाद से मलका सबा और जो मुल्क सबा था उसकी नाशुक्रियों की कहानी है, और मैंने और आपने इसको अपने अपने मुल्कों और अपने अपनी अथॉरिटीज की रोशनी में देखना है। अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया और मेरे अमल कैसे हैं, क्या मैं अपने किसी मामले में, यानी बीवी होने के नाते, कदरदान शोहर की नाकदरी तो नहीं करती, अपने बच्चों की नाकदरी तो नहीं करती, माँ बाप की नाकदरी तो नहीं, अपने मुल्क की नाकदरी तो नहीं करती, और सबसे बढ़कर इस्लाम की नाकदरी तो नहीं करती जो अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाल दिया। ये बहुत ही ज्यादा थॉट प्रवोकिंग वाकया है, और इसको पढ़ते वक्त हम खुद भी फील करेंगे कि वो कितनी नाफरमान कौम थी कि अल्लाह की नेमतों को उसने अपनी नाशुक्रियों से दूर कर दिया। लकत कान अली सबा भी मस्कनी माया, सबा के लिए उनके अपने मस्कन में एक निशानी मौजूद थी, दो बाग दाई और बाई, खाओ अपने रब का रिस्क और शुक्र बजा लाओ इसका, मुल्क है अमदा पकीज़ा और रब है परवरदिगार बख्शने वाला। इतनी प्यारी अरबी के फॉन्ट में अगर आप देखें ना, कुलो मिन रिस्क रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर, और क्या चाहिए किसी कौम को, खाओ भी पियो भी और रब भी तुम्हें माफ करने वाला है, रब गफूर है। आज हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह की नेमतों को हम सही इस्तेमाल करें और अल्लाह की रहमतों को भी पा सके। मगर वो मुंह मोड़ गए, फारदू, यही इंसानों की अक्सरियत है, माल नेमत पाकर इसी तरह होती है। आखिरकार हमने इन पर बन तोड़ सैलाब भेज दिया, और इनके पिछले दो बागों की जगह दो और बाग इनको दिए, जिनमें कड़वे कसैले फल और झाव के दरख्त थे, कुछ थोड़ी सी बेरियां भी थी। ये था इनके कुफर का बदला जो हमने इनको दिया, और नशुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी और को नहीं देते। और हमने इनके और इनकी बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमायाँ बस्तियां बसा दी और इनमें मुसफर की मुसाफत एक अंदाजे पर रख दी। चलो फिर इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ, मगर उन्होंने कहा रब, ए हमारे रब, हमारे सफर की मुसाफतें लंबी कर दे। एडवेंचरस थे ना, कहने लगे ये हमें मजा नहीं आता, ये इतने फल दरख्त हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने इनको इतनी हरियाली दी थी कि जब इनमें से कोई सर पे एक खाली टोकरी रख के किसी जंगल के अंदर से गुजरता, इससे पहले कि वो जंगल को पार करके दूसरी तरफ पहुंचता, खुद से टूट टूट के गिरे हुए फलों से वो बास्केट भर चुकी होती थी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमें तो मजा ही नहीं आता, इतने फल हैं, दिस है, हमें तो लंबे लॉन्ग रूट चाहिए। सब दरख्त काट दिए होंगे उस दौर में भी, और कहा हमें तो लंबे रास्ते चाहिए। अल्लाह कहते हैं ठीक है, बस जलम हुआ अनफुसहुम, उन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया, आखिरकार हमने इनको फसाना बना दिया और इन्हें बिल्कुल तितर बितर कर दिया। आज उनकी बातें ही रह गई। यकीनन इसमें निशानियां हर उस शख्स के लिए जो बड़ा साबिर और शाकिर हो। इनके मामले में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्होंने इसी की पैरवी की, सिवाय एक थोड़े से गिरोह के जो मोमिन था। इब्लीस को इन पर कोई इक्तदार हासिल ना था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ कि हम ये देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन उसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ। तेरा रब हर चीज पर निगरान है। नबी, इन मुशरिकीन से कहो, पुकार देखो अपने इन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझे बैठे हो। वो ना आसमानों में किसी जर्रा बराबर चीज के मालिक है, न जमीन में, वो आसमान और जमीन की मलकियत में शरीक भी नहीं है, इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं। अल्लाह के हजूर कोई शिफात भी किसी के लिए नफामंद नहीं हो सकती सिवाय उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। हत्ता के जबकि लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया, वो कहेंगे ठीक जवाब मिला, और वो बुजुर्ग को बरतर है। आप देखिए कितनी क्लियर आयत है ना, शिर्क से बचने की, सिफारिश की असल की। इसके बावजूद आज उम्मत मुस्लिमा की 80-90% आबादी क्यों शिर्क का शिकार है, वजह आप बता सकते हैं? वस्कुर नमा युतलफी बुयूती कुन्ना पे अमल नहीं हो रहा, कुरान के तालीम को हमने पर्दों में रखा हुआ है। आज सिर्फ कुरान का लफ्जी तर्जमा आम कर दें, बा मुहावरा आम कर दें। मैंने उस जिहाद बिल कुरान के बारे में सूरह फुरकान की आयत में ये जिक्र किया था कि आपको अगर दुनिया से शिर्क खत्म करना है ना, इतना आसान है, आप यहां सीखें उसके बाद आप अपने अपने मुल्कों में जाएं। अगर अल्लाह आपको मौका दे पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां बहुत शिर्क फैलता है, आप अपने अपने गांव के, अपने अपने इलाकों के लोगों को बैठकर सिर्फ कुरान का तर्जमा सुना दें और उनसे कहें आप बताओ इसका क्या मतलब। उनको लंबी तफसीरें नहीं चाहिए, उनको कहां ये कॉन्सेप्ट चाहिए जो हम यहां बैठ के वेस्ट के मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, उनको सिर्फ कुरान से तर्जमा सिखा दे, आप देखेंगे उनको पता लग जाएगा कि ये आयतें तो साफ बोल रही हैं कि शिर्क ना करो, किसी की सिफारिश ना करो, लेकिन चूंकि आज कुरान को जुजदानों में छुपा कर सिर्फ बरकत के लिए रखा, बंद किताब की आज ताजीम बहुत है, खुली किताब पढ़ने वाले आज कितने हैं, हम खुद देख लें। हम अपने ऊपर इसको लेकर सोचें कि जब तक इस किताब को खोलेंगे नहीं, इसका असल पैगाम आम नहीं होगा, दुनिया से शिर्क तो क्या किसी छोटी बड़ी बुराई का खात्मा हो नहीं सकता। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, हमें जरिया बना ले आज के दौर में अंधेरों को रोशनियों में बदलने का। क्या तरीका है, हाय बड़ा अंधेरा, हाय बड़ा अंधेरा, अंधेरा अंधेरा, क्या करें आप, छोटा सा चिराग जला दें, चिराग से चिराग जलते जाएं, अपनी एफर्ट अपनी कोशिश डाल दें, फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह ताला अंधेरा अंधेरा कहने से कुछ भी नहीं होगा। एक छोटी सी कैंडल आप जलाएंगे ना, पूरे हॉल में कहीं ना कहीं तो रोशनी उसकी पहुंचेगी, फिर उसके बाद एक और कैंडल, एक और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बाद लोगों के अंदर ये सब कुछ आम होने लगेगा। फिर इसके बाद फरमाया ए नबी कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ध, इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है। कोई गांव का लोग होंगे, वो कहेंगे दाता साहब देते हैं जी, वो करनी वाले करते हैं। कहा नहीं, कहो अल्लाह देता है। अब ला मुहल्ला हम में और तुम में से कोई एक हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा है, इनसे कहो जो कसूर हमने किया हो इसकी बात पुरस तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी जवाब तलबी हमसे ना की जाएगी। कहो हमारा रब हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसले करेगा, वो ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। सोचिए अल्लाह की ये सिफत, हाकिम, क्या अल्लाह को हाकिम मानती हूँ? हाकिम कौन होते हैं, मुल्क के हुक्मरानों को क्या कहते हैं, उनके बनाए हुए लॉस मानते हैं कि नहीं मानते? तो अल्लाह के लॉस भी मानने हैं और वो जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन सी हस्ती हैं जिन्हें तुमने इनके साथ शरीक लगा रखा है, हरगिज नहीं, जबरदस्त और दाना तो वो अल्लाह ही है। ऐ नबी हमने तुमको तमाम इंसानों के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा। लेकिन हाल क्या है, हाईलाइट कर ले, वला किन अक्सर अन्नास इला यालमून, लेकिन अक्सर लोग तो जानते ही नहीं है। जरा उम्मते वसत होने के नाते इस आयत पे 3 सेकंड गौर करें। आज इंसान क्यों नहीं जानते कि अल्लाह के नबी बशीर और नजीर थे? क्योंकि उम्मते मुस्लिमा ने उम्मते वसत का किरदार अदा करने से इनकार किया हुआ। हम कहते छोड़ो, इनको क्यों छेड़ते हो? देखिए, बाज़ लोग इस पे भी बड़े ऑफेंड होते हैं कि किसी को काफर कहो के ना करो। थोड़ा सा समझ लीजिए इस मसले को, आप में से भी किसी का ये इशू हो सकता है। आप कहते फलां काफिर है, फलां ने अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, अल्लाह के लॉज को नहीं मानता। तो कुफर के शेड्स होते हैं, जैसे ब्लैक है ना, ग्रे होगा, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, होते होते कहीं वाइट होता है। तो किसी को, कोई अल्लाह को नहीं मानता वो तो मुतलिकन काफिर है, एथियस्ट। कोई अल्लाह को मानता उसके हुक्म को नहीं मानता, डिनायल फॉर्म में है, कहता है मैं नहीं मानता अल्लाह है, कोई है, या मैं इस्लाम को नहीं मानता, उसने तो खुद ही कह दिया वो काफिर है। फिर कुछ है वो मुंह से कहते हैं हम हैं अहले किताब है, मानते, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते। तो कुफर का दर्जा कम होता जाएगा। मैं अक्सर जब भी लफ्ज़ बोलती हूँ तो कुफर के लफ्ज़ को आप नोट करिएगा, ना शुक्री बोलती हूँ। तो इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होता कि ना शुक्रापन है। एक मुसलमान होने वाला 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो वो ना शुक्र है। अब आप कह के नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, लोग बहुत माइंड करेंगे। तो आप ये कह दें एक मुसलमान है और वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो ना शुक्रापन है, तो कोई इस पर एतराज कर सकता है? और सच, ना शुक्र शख्स ही काफिर होता है। रात को काफिर कहते हैं ना, तो काफिर कौन होता है? जो अल्लाह को ना पहने, उसकी बातों को ना माने और उसके हुक्मों को ना माने। तो इसीलिए ऐसे तमाम कुफर को खत्म करने का एक ही तरीका है कि लोगों को अल्लाह की कदर दिला दो, कि अल्लाह कितना जबरदस्त और कितना बड़ा है।